पहला पाठ ऐतिहासिक चिंतन के उद्गम डैश यूनानी ईसाई अधु कौमा यूनानी कौमा ईसाई कौमा आधुनिक। इस अध्याय में 19वीं शताब्दी से पूर्व के उन विभिन्न तत्वों की खोज की गई है जिनके सम्मिलन से उस बौद्धिक ज्ञान शाखा की प्राप्ति हुई जिसे इतिहास की संज्ञा प्रदान की जाती है। इसके लिए इतिहास संबंधी परंपरागत यूनानी तथा यहूदी ईसाई विचारों से प्रारंभ करके पुनर्जागरण तथा सुधार युग तक की विकास प्रक्रियाओं 17वीं शताब्दी के पांडित्य युग तथा 18वीं शताब्दी के की ज्ञानोदीप्ति की चर्चा की गई है। यूनानी परंपरा पारिभाषिक अर्थ में इतिहास का अध्ययन विषय अत्याधुनिक तथा पूर्णतः पाश्चात्य प्रपंच है। इतिहास नामक शिखा शाखा की उत्पत्ति 6वीं-5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के क्लासिक यूनान में मिलती है जहां इसका प्रकाशन सृजनात्मक बौद्धिक कार्य व्यापार की एक अभिव्यक्ति के रूप में हुआ जिसमें पाश्चात्य दर्शन विज्ञान चिकित्सा शास्त्र तथा कला की नींव रखी गई। स्वयं इतिहास शब्द का प्रयोग इस समय परीक्षा सिद्ध गवेषणा के अर्थ में हुआ। इन्वर्टेड कॉमा चालू हिस्टोर वह विशेषज्ञ होता था जिससे झगड़ों के निपटारे के लिए अभ्यर्थना की जाती थी। इन्वर्टेड कॉमा बंद थियुसिडाइडीज लिखित पेलोपोनेशियन युद्ध का इतिहास इस युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कृति थी। यद्यपि यह प्रथम ऐतिहासिक कृति नहीं थी, यह युद्ध लेखक के अपने राज एंथेस जिसका व्यापारिक साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था तथा सपाटी के नेतृत्व में अन्य प्रतिद्वंदी यूनानी नगर राज्यों के बीच में हुआ एक निर्णयात्मक संघर्ष था। इसके निर्णयात्मक स्वरूप का भान करते हुए थियुसिडाइडीज ने घटनाओं का वर्णन 431 ईसा पूर्व में युद्धारंभ के ठीक बाद से प्रारंभ किया। यह रोचक तथा महत्वपूर्ण है कि कितनी भारी संख्या में ऐतिहासिक कृतियां इस प्रकार की प्रमुख संकट स्थिति कालीन घटनाओं यथा रोम का पतन फ्रांस की क्रांति प्रथम विश्व युद्ध इत्यादि की व्याख्या का प्रयास करती है। अपनी भूमिका में थियुसिडाइडीज ने अपने लेखन की विधि की व्याख्या की है। इस विधि में मूल साक्ष्यों के समीक्षात्मक प्रयोग पर बल दिया गया है। उसने यह दावा किया कि उसकी कृति पूर्ववर्ती ऐतिहासिक रचनाओं से जिनमें की समीक्षात्मक दृष्टि का प्रयोग किए बिना किंवदंतियों तथा पुराण कथाओं को स्वीकार कर लिया गया है से श्रेष्ठतर है। इस समीक्षात्मक तथा तर्कशील धारणा संपूर्ण क्लासिकल यूनानी चिंतन की एक प्रमुख विशिष्टता है तथा आधुनिक पाश्चात्य व्यक्ति इस पक्ष से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। तथ्यों के निश्चय तथा विवरणों के लेखन के अतिरिक्त थियुसिडाइडीज ने युद्ध के कारणों तथा एंथेस के पराजय के कारणों की व्याख्या प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। उसने दृष्टांत के द्वारा परिवर्तित पीढ़ियों को शिक्षित करने का प्रयत्न किया जिससे वे उस दृष्टांत का अनुकरण करके अपनी समस्या का समाधान खोज सकें। ऐतिहासिक विकास गति को वह चक्रात्मक मानता था। उसके लेखन में दो बातें ऐसी हैं जिनसे वह आधुनिक इतिहासकार संतुष्ट नहीं होता। उसकी रुचि केवल समसामयिक घटनाओं पर थी। स्वयं अपनी पीढ़ी की स्मृति से परे अतीत के विषय में उसका अवबोध बहुत कम था और भविष्य में ऐतिहासिक विकास गति की दिशा के संबंध में उसकी कोई स्पष्ट धारणा नहीं थी। कुछ विशिष्ट घटनाओं को न समझ पाने पर वह भाग्यवादिता का आश्रय लेता दिखाई पड़ता है, किंतु उसमें कथा कहने का एक आत्मस्फूर्त उत्साह था। राष्ट्रीय चरित्र जीवन चरित्र राजनीति तथा भूगोल में स्पष्ट रुचि थी। आज भी ये सभी इतिहास लेखन के प्रमुख घटक हैं। प्रायः यह कहा गया है कि यूनानी दर्शन की प्रमुख धारा ऐतिहासिक प्रपंच को सर्वथा महत्व शून्य मानती है। इसे यथार्थता की छाया मात्र माना जाता था। यूनानियों की दृष्टि में ऐतिहासिक घटनाओं का लेखन अपेक्षाकृत महत्वहीन बौद्धिक कार्य व्यापार था। अरस्तु का ऐसा ही विचार था। यूनान में दार्शनिकों ने अपनी विचार शक्ति का प्रयोग इतिहास के किसी दर्शन का निर्माण करने में नहीं किया। कई रूपों में इतिहास के परंपरागत हिंदू विचार के समान है, परंतु बाद में तर्कशील समीक्षा की विशिष्टता ने उत्तम ऐतिहासिक लेखन तथा अति गंभीर दर्शन को जन्म दिया। सी डायडीज के समय तक इतिहास साहित्य का अंग बना रहा, किंतु उसके समान स्तर को वह बाद में हेलेनिस्टिक विश्व में और यूनानी संस्कृति से अधिगृहित रोमन विश्व में भी कदाचित ही प्राप्त कर सका। आधुनिक युग के प्रारंभ में 14वीं-15वीं शताब्दी के पुनर्जागरण के युग में जानबूझकर इसी तर्कशील समीक्षा की प्रवृत्ति को पुनर्जीवित किया गया। यहूदी ईसाई परंपरा। पाश्चात्य विचार के विकास में यहूदी ईसाई परंपरा का समान महत्व रहा है। इस परंपरा में इतिहास की स्थिति यूनानी परंपरा की स्थिति के सर्वथा विपरीत है। जहां यूनानी परंपरा में ऐतिहासिक लेखन के प्रतिमान के रूप में आधुनिक मनुष्य को देने के लिए बहुत कम है, ईसाई दर्शन विशिष्ट रूपे ऐतिहासिक है तथा इसने प्रथम इतिहास दर्शन प्रस्तुत किया। ईसाई धर्मशास्त्र ऐतिहासिक प्रपंच के महत्व के स्वीकारण पर आधारित है, जो इस विश्वास पर आधारित है कि मनुष्य परम सत्य की प्राप्ति इतिहास के मध्य करता है, जिसमें ईश्वर अपनी सृष्टि के लिए आत्म प्रकाशन करता है। अपने धर्म का यह विशिष्ट ऐतिहासिक स्वरूप ईसाइयों को अपने यहूदी पूर्वजों से उत्तराधिकार रूप में प्राप्त हुआ। यहूदी धर्म का प्रारंभ ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति के साथ हुआ, जिसमें यहूदी ईश्वर याहवे ने अपने चुने हुए लोगों के साथ एक विशेष समझौता अथवा अनुबंध किया है। एक वर्ग के रूप में उनके विकास का इतिहास उनके धर्म के लिए अपरिहार्य है। यदि कुछ ऐतिहासिक घटनाएं वास्तव में नहीं घटी होती तो उनके धर्म का संपूर्ण आधार मिथ्या स्थापित होता। इस इतिहास की तीन प्रमुख विशिष्टताएं थी। प्रथम तो इसमें प्रकृति का भौतिक विकास महत्वपूर्ण नहीं था, केवल मनुष्य तथा ईश्वर महत्वपूर्ण थे और इस कारण इतिहास इन दोनों के बीच स्थित संबंधों की कथा के रूप में स्वीकार किया गया। दूसरी यह कि इस संबंध को नैतिक शब्दावली में परिभाषित किया गया। ईश्वर को भुला देने तथा उसके आदेशों की अवज्ञा करने पर मनुष्य ईश्वर द्वारा दंडित होना अपरिहार्य था। धार्मिक पैगंबर की भूमिका लोगों को ईश्वर के कार्यों को स्मरण दिलाती थी और उन्हें यह चेतावनी देती थी कि उसे भूलने का पाप करने पर वे दंडित होंगे। बेबीलोनिया के निवासियों द्वारा यहूदी पराजय को इसी प्रकार के दंड के रूप में व्याख्यायित किया गया। इसी समय एक तीसरी विशेषता का अनुप्रवेश हुआ। प्रथम मुक्ति की आशा में विश्वास के साथ भविष्य की प्रतीक्षा, दंड तथा दुख को यह कहकर व्याख्यायित किया गया कि मनुष्यों के परिष्कार के लिए ईश्वर का यह अपना मार्ग है, जिससे कि वे अंततः मुक्ति पा सके। इस विचार के अनुसार ऐतिहासिक विकास रेखीय अनुक्रम में उपस्थित होता है, जो इस सृष्टि से प्रारंभ कर महत्वपूर्णत्व की स्थिति तक एक अनवरत विकास के रूप में देखता है। इस विकास में मनुष्य महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर अपना बहिष्कार करता है। ईसाई धर्म का विकास यहूदी धर्म से हुआ और उसने यह दावा किया कि ईसा के रूप में यहूदी आशा को पूर्णत्व प्राप्त हुआ है। उनके पवित्र इतिहास में ईसा के जन्म की घटना सबसे हाल की और सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी, जो अतीत तथा भविष्य दोनों को अर्थ प्रदान करती थी तथा संपूर्ण इतिहास का केंद्र बिंदु थी। यह मान्यता पहले भी प्रतिष्ठित थी कि यहूदियों का विशिष्ट ईश्वर संपूर्ण मानव जाति का ईश्वर था, किंतु ईसाई धर्म में इस विश्वकात्मकता की पुष्टि हुई। ऐसे लोगों को जो यहूदी नहीं थे और बाद में ईसाई धर्म में स्वीकृत हुए थे, यहूदी इतिहास की शिक्षा देना तथा ईसाई धर्म और यहूदी धर्म के ठीक ठीक संबंध को परिभाषित करना आवश्यक था। एक निष्ठ विवरण देने के उद्देश्य से यहूदी इतिहास से बाहर की घटनाओं को भी सम्मिलित किया गया, जिससे सार्वभौमिक इतिहास तथा रेखीय विकास की अवधारणा को बल मिला। अब ईसा के द्वितीय आविर्भाव को इतिहास का लक्ष्य माना गया। प्रथम वास्तविक इतिहास दर्शन 5वीं-7वीं शताब्दी में अफ्रीकी ईसाई बिशप सेंट ऑगस्टीन द्वारा लिखा गया। प्रारंभिक यहूदी इतिहास ईश्वर द्वारा यहूदी समाज को अस्तित्व में लाने से संबंधित अनुक्रमिक घटनाओं की व्याख्या था तथा प्रारंभ में यह सफलता का इतिहास था। बेबीलोन वासियों द्वारा यहूदियों के पराजय तथा उनके बंदी बनाए जाने के पश्चात भावी आशा के एक नए आयाम का अनुप्रवेश हुआ। इस प्रकार ईसाई चर्च दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होता गया तथा चौथी शताब्दी ईस्वी में ईसाई धर्म रोम साम्राज्य का राजकीय धर्म बना। इसके बाद ही पांचवी शताब्दी में रोम यूरोप की बर्बर जातियों द्वारा अभिभूत हुआ और कुछ लोगों द्वारा इस पराजय का दोष ईसाई धर्म पर आरोपित किया गया। इस दोषारोपण के उत्तर में सेंट ऑगस्टाइन ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक ईश्वर का नगर अर्थात सिटी ऑफ गॉड की रचना की। उन्होंने कहा कि इतिहास में दो नगर होते हैं, पहला मनुष्य का नगर तथा दूसरा ईश्वर का नगर अर्थात राज्य और चर्च। इतिहास में इनमें विभेद किया जा सकता है किंतु इन्हें स्पष्टतः पृथक नहीं किया जा सकता। ईश्वर अपनी विशिष्ट ईश्वरीय दृष्टि से इन सब का पर्यवेक्षण करता है किंतु केवल चर्च में ही मनुष्य अपनी विमुक्ति की दिशा में विकास करता है। राज्य कोई परम मूल्य युक्त वस्तु नहीं है, अतएव रोम का विनाश मानवता के वास्तविक विकास को प्रभावित नहीं करता। ईश्वर के नगर का अस्तित्व बना रहता है। ऑगस्टाइन के लेखन में यूनानियों की इतिहास के चक्रीय विकास की अवधारणा का दृढ़ अस्वीकरण दिखाई पड़ता है। इतिहास में ईश्वर के सम प्रकाशन की एक ही कथा है जिसमें ईसा का जन्म केंद्र बिंदु के रूप में स्थित है। इस बिंदु तक यह कथा यहूदियों के पवित्र इतिहास द्वारा संचालित थी। इसके बाद चर्च अथवा ईश्वर का नगर यह संचालन स्रोत बनेगा। इस प्रकार एक ईसाई के लिए इतिहास ईश्वर के साथ संबंध के संदर्भ में मनुष्य का सार्वभौमिक वृत्त बन गया, जो एक अर्थपूर्ण रूप में मूंछ की ओर एक ही दिशा में विकासमान हो रहा है। मनुष्य को अपना अर्थ इस इतिहास में प्राप्त होता है। इन विचारों का अस्तित्व मध्यकाल में बना रहा। आधुनिक युग के प्रारंभ में आत्म प्रकाशन करने वाले ईश्वर की अवधारणा सने पृष्ठभूमि में चली गई, किंतु एक ही अर्थपूर्ण सार्वभौमिक वृत्त के रूप में ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया के स्वरूप की अवधारणा अवस्थित रही। वस्तुतः इतिहास के रूप में लिखित ईसाई ऐतिहासिक रचनाओं का जब यूनानी परंपरा से मेल हुआ, तब इतिहास की आधुनिक शिक्षा शाखा अस्तित्व में आई। यूरोपीय पुनर्जागरण तथा सुधार 1400 से 1600 मध्यकाल के विरोध में उपस्थित एक ही प्रतिक्रिया के अंग हैं। दोनों की ही चेष्टा उस प्राचीन विश्व की पुनर्प्राप्ति थी जो जैसा कि वे अनुभव करते थे खोया जा चुका था। उन्होंने मध्यकालीन चर्च की निरंकुशता तथा संकीर्णता का निराश किया तथा यूनान से चली आ रही मनुष्य तथा राजनीति में समीक्षात्मक बुद्धि तथा रुचि को तथा जैसा कि वे अनुभव करते थे ईसा के वास्तविक धर्म तथा प्रारंभिक चर्च को पुनर्जीवित किया। इसके लिए ऐतिहासिक कालों के अवबोध तथा विभिन्न समयों के मूल्यांकन की अपेक्षा थी। इसके परिणाम स्वरूप समय की धारा को प्राचीन मध्य आधुनिक संज्ञाओं द्वारा वर्गीकृत करने का प्रयोग प्रारंभ हुआ। प्राचीन इतिहास में रुचि ने जन सामान्य को यूनान तथा रोम के इतिहास के अध्ययन तथा सोत्साह अनुकरण के लिए प्रेरित किया। यूनान की समीक्षात्मक बुद्धि पुनः एक सद्गुण के रूप में प्रतिष्ठित हुई तथा विभिन्न इतालवी नगर राज्यों के इतिहासों में जिनमें रोम के इतिहास का अध्ययन ऐसे दृष्टांतों की खोज के उद्देश्य से किया गया जिनसे आधुनिक मनुष्य शिक्षा ग्रहण कर सके, इसका व्यवहार किया गया। इस काल से ही हम ऐतिहासिक रचनाओं का अनवरत विकास खोज सकते हैं। इतिहास लेखन में प्रलेखों का महत्व - 17वीं शताब्दी में इतिहास लेखन में प्रलेखों का महत्व स्थापित हुआ। अतीत के विवरण के निर्माण में उनकी समीक्षा की जाने लगी। संभवतः इसका प्रारंभ ऐतिहासिक रीति विज्ञान में सर्वाधिक नाटकीय प्रगति लॉरेंजा वल्ला की यह घोषणा थी कि कॉन्स्टेंटाइन का दानलेख जालसाजी है। इस दानलेख में कहा गया है, चौथी शताब्दी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा रोम के पोप को पार्थिव सत्ता का दान दिया गया था तथा रोम के चर्च द्वारा पार्थिव शक्ति का दावा इसी पर आधारित था। बल्ला ने यह प्रमाणित किया कि यह लेख चौथी शताब्दी में नहीं लिखा जा सकता था। भाषा के अपने ज्ञान की सहायता से उसने प्रदर्शित किया कि प्रलेख की भाषा तथा इसमें दिए गए कुछ उदाहरण 9वीं शताब्दी के पूर्व के नहीं हो सकते थे। ज्ञान तथा तथ्यों की सहायता से बल्ला ने चर्च के प्राधिकार तथा परंपरा को अस्वीकार किया जो मूलतः दान लेख पर आधारित था। प्रलेखों की आलोचना का यह प्रारंभ अब भी इतिहास के अध्ययन में प्रथम तथा मूलभूत आधार माना जाता है। 17वीं शताब्दी में, जिसे कभी कभी पांडित्य का युग कहा जाता है, पांडुलिपियों के विशाल भंडार का संपादन किया गया तथा प्रलेखों के मूल्यांकन के सिद्धांतों को परिशुद्ध किया गया। इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्माण हमें संतों का विवरण प्रदान करने वाले विशाल संग्रह के अनुप्रवेशी लेख माविलों के द रे डिप्लोमेटिका 1681 ईस्वी में प्राप्त होता है। यह पादरियों की एक मंडली की सम्मिलित कृति थी जिसका कि वह स्वयं एक महत्वपूर्ण एवं विद्वान सदस्य था। इस प्रकार 17वीं शताब्दी में उस आधुनिक विज्ञान का भी प्रारंभ हुआ जिसमें साक्ष्य तथा प्रत्यक्ष अनुभव मात्र को ज्ञान का प्रमाणिक आधार माना गया। सत्ता तथा परंपरा का तिरस्कार कर आधुनिक मनुष्य ने तथ्यों से जूझने में गर्व का अनुभव किया। इतिहास ने भी इस प्रवृत्ति में सहभाग किया तथा अतीत के विवरण के निर्माण में अनम एवं अपरिवर्तनीय तथ्यों का निरूपण करने के लिए एक समीक्षात्मक रीति विज्ञान को विकसित किया। प्रबुद्धतावादी विचारधारा का जन्म वाल्टेयर का योगदान 18वीं शताब्दी के नए ज्ञान बोध का नए विज्ञान से परिचय हुआ। इस युग में विज्ञान सम्मत नए विश्वास लोकप्रिय हुए तथा इनका व्यापक प्रचार हुआ। न्यूटन का मत इस नए विज्ञान की एक प्रमुख अभिव्यक्ति था। इसने जगत में एक व्यवस्था देखी जिसकी अभिव्यक्ति सभी कालों तथा सभी देशों में समान रूपेण कार्य करते हुए प्राकृतिक नियम के रूप में होती है। इसी अवधारणा के आधार पर यह स्वीकार किया गया कि स्वभाव भी अपरिवर्तनशील माना जा सकता है। यही मानव का स्वभाव अपरिवर्तित मान लिया जाए तो उसके इतिहास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। एक बार फिर इतिहास एक ऐसे दर्शन के बीच आ पड़ा जो मूलतः इतिहास विरोधी था, किंतु इतिहास फिर भी जीवित रहा। इसे सर्वाधिक प्रभावी दार्शनिकों में गण्यमान वाल्टेयर के योगदान से दर्शाया जा सकता है। सर्वांगीण रुचि इस युग की विशेषता थी और वाल्टेयर ने इसका दो महत्वपूर्ण रूपों में प्रयोग किया। उसने अपने लुई 14वें के युग के इतिहास में सांस्कृतिक तत्वों को राजनैतिक तत्वों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया। इससे न केवल वास्तविक इतिहास में सम्मिलित की जाने वाली सामग्री के नए प्रतिमान स्थापित हुए अपितु युग विशेष की आत्मा का विचार भी प्रारंभ हुआ। वाल्टेयर इस अवधारणा को इसके इस स्पष्ट निष्कर्ष तक नहीं ले गए कि प्रत्येक युग विशिष्ट होता है, किंतु उन्होंने इस दिशा में पहला कदम उठाया। दूसरे, वाल्टेयर पहले यूरोपीय हैं जिन्होंने एशियाई संस्कृति को गंभीर रूप में लिया। 16वीं-17वीं शताब्दी की खोजों ने प्राचीन भारत और चीन की महान संस्कृतियों की ओर यूरोप का ध्यान खींचा। ये बाइबिल के ऊपर केंद्रित विश्वव्यापी ढांचे में स्थान नहीं पा सकी। एक सुसंबद्ध सार्वभौमिक इतिहास लिखने की अपेक्षा वाल्टेयर की रुचि अपने देशवासियों को यह बताने की ओर अधिक थी कि एशिया यूरोप के समान ही सभ्य था। मानव स्वभाव के संबंध में उसकी अपनी अवधारणा प्रत्येक सभ्यता को विशिष्ट मानने में बाधक थी, किंतु पुनः उसने भावी इतिहासकारों के लिए एक प्रतिमान स्थापित किया। अब केवल यूरोप पर केंद्रित इतिहास को पूर्ण नहीं माना जा सकता था। इस प्रकार उसने इतिहास के तत्व के और अधिक व्यापक अवबोध में योगदान दिया तथा इसकी दृष्टि 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों से अधिक व्यापक है। वाल्टेयर तथा ज्ञानोदीप्ति मुख्यतः यूनानी परंपरा में ठीक बैठते हैं जिसमें विशिष्ट तत्व है। मनुष्य तथा प्रकृति के प्रति व्यापक जिज्ञासा, ज्ञान के प्रति समीक्षात्मक तथा तर्कशील दृष्टिकोण तथा उपदेशात्मक उद्देश्य, किंतु उसके इतिहास के क्षेत्र का विस्तरण तथा सार्वभौमिक इतिहास में उसकी रुचि ईसाई परंपरा की अधिक ऋणी है। बिक्को एवं हर्डर के विचार। इतिहास की यह प्रबुद्धतावादी विचार धारा आलोचना से सर्वथा बची नहीं रह सकी। इसके आलोचकों में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आलोचक बिक्को तथा जर्मनी निवासी हर्डर थे। बिक्को एक विशिष्ट प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। इतिहास पर लिखी गई उसकी कृति नवीन विज्ञान अर्थात द न्यू साइंस को स्वयं उसके समय 18वीं शताब्दी में लोगों ने नहीं पढ़ा और न ही इसके बाद उसे अधिक पढ़ा गया है, किंतु यह ऐसे विचारों से यद्यपि अपेक्षाकृत अपरिष्कृत रूप में मुक्त है जो बाद में सामने आए उसका प्रत्यक्ष प्रभाव न होने के कारण उसकी लेखन विधि तथा ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया पर उसके प्रभाव पर विस्तार से विचार संभव नहीं है, किंतु उसने दो मौलिक विचारों को जन्म दिया जो आधुनिक इतिहास लेखन के विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि उसकी कृति के शीर्षक से स्पष्ट है, बिक्को का यह विचार था कि वह किसी ऐसी वस्तु का प्रतिपादन कर रहा है जो नई है, चुनौती देने वाली है अथवा कम से कम भौतिक विज्ञान के दावों की पूर्ति करने वाली है। बिक्को ने सुरक्षात्मक विधि नहीं अपनाई। उसने आग्रह पूर्वक कहा कि इतिहास का रचयिता मनुष्य है, अतएव मनुष्य प्रकृति की अपेक्षा इतिहास को अधिक स्पष्ट रूप में जान सकता है। कदाचित ही कोई इतिहासकार अपनी स्थिति के प्रति इतना अधिक विश्वासी रहा है जितना कि बिक्को था। प्राकृतिक विज्ञान ने इतिहास की अपेक्षा एक अधिक संतोषजनक रीति विज्ञान तथा सुनिश्चित निष्कर्षों का एक अधिक सुप्रतिष्ठित संग्रह विकसित किया। वैज्ञानिक प्रवृत्ति की लोकप्रियता के प्रतिस्थापन के समय से इतिहासकार एक सुरक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए इतिहास लेखन की इस विधि के अनुकरण के प्रति आकर्षित होते रहे हैं। यह विधि यूनानी तथा ईसाई विचारों के विभेद की निरंतरता प्रदर्शित करती है, जिसमें पहला प्राकृतिक तथा मानवीय दोनों क्षेत्रों को तर्कशील मानता है, जबकि दूसरा इन दोनों में स्पष्ट भेद करता है। बिक्को का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत यह था कि इतिहास आत्म प्रकाशनीय है, अर्थात यह कि इसका अपना विशिष्ट अर्थ होता है जिसे किन्हीं बहिर्भूत प्रतिमानों की सहायता के बिना प्रत्यक्ष अध्ययन द्वारा समझा जाना चाहिए। बिक्को की अपनी विधि के अनुसार किसी भी प्रदत्त समाज के स्वरूप का सूत्र उसकी भाषा का विश्लेषण था। धर्मशास्त्रीय तथा दार्शनिक दोनों ही विधियां नित्य यथार्थताओं को अपना प्रारंभ बिंदु मानती है, पहली ईश्वर को और दूसरी तर्क को। बिक्को का रीति विज्ञान इन दोनों विधियों का विकास प्रस्तुत करता है। इसकी कार्यविधि अनुभववादी विज्ञानों की विधि के सदृश है। बिक्को के ये दो सिद्धांत जिन पर वह अपने इतिहास अध्ययन को आधारित करता है इतिहासवाद के अनिवार्य आधार हैं। 18वीं शताब्दी के अंत में बिक्को के विचारों को जर्मनवासी हर्डर ने आगे बढ़ाया। हर्डर का पालन पोषण जर्मनी की धार्मिक परंपरा में हुआ था जो नए ज्ञान बोध से कम प्रभावित हुई थी तथा इतिहास के स्वरूप पर विचार करने वाली उसकी रचनाएं ज्ञानोदीप्ति के विचारों की सीधी आलोचना है। इस प्रकार की सर्वाधिक तीव्र आलोचना उसकी प्रारंभिक कृति यट एनेदर फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री तदपि एक अन्य इतिहास दर्शन में मिलती है जो उसने 30 वर्ष की आयु में 1774 में लिखी थी। इसमें उसने इस बात को अस्वीकार किया गया है कि इतिहास में सामान्यीकरण संभव है। हर्डर के मत में प्रत्येक समाज विशिष्ट होता है और उस समाज के विकास का प्रत्येक क्षण भिन्न होता है। उसने विशेष रूप से ज्ञानोदीप्ति द्वारा मध्यकाल के प्रत्याख्यान को चुनौती दी। उसने आग्रह किया कि इसका अपलोप नहीं किया जा सकता क्योंकि उस समय के लोगों के लिए यह एक यथार्थ था। इस विचार में ऐतिहासिक विशिष्टता की यह अवधारणा इतिहासवाद की मुख्य विशेषता है। सामान्यीकरण को अस्वीकार करने पर तथा किसी बाह्य प्रतिमान का व्यवहार असंभव मानने पर इतिहासवादी के लिए इस बात की व्याख्या करना अनिवार्य हो जाता है कि क्यों किसी समय विशेष में किसी विशेष मानव समाज ने एक विशेष प्रकार का विश्वास रखा और एक विशेष रूप में कार्य किया। यहाँ हर्डर अपने आलोचकों को उनका मुख्य विषय प्रदान करता है। इतिहास में प्रत्येक क्षण एक विशेष प्रकार का होता है, क्योंकि वह इससे भिन्न नहीं हो सकता था। प्रत्येक क्षण ही उसकी अपनी व्याख्या है। उसने इतिहास को बीको के समान न केवल आत्म प्रकाशनीय माना, अपितु स्वयं का औचित्य स्थापित करने वाला एवं अंतिम ही माना। परिणाम स्वरूप हर्डर में एक सर्वथा आत्मसीमित शास्त्र व्यवस्था प्राप्त होती है और इतिहासवाद की इसके प्रकाश में आलोचना हुई है। इस निष्कर्ष के कारण इतिहासवाद के सामने वे समस्याएं उठती हैं जो संपूर्ण ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया को मूलभूत नित विचारों के आधार पर व्याख्यायित करने वाले परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शनों के सामने होती है। ज्ञानोदीप्ति की आलोचना में हर्डर ने एक अन्य महत्वपूर्ण बात कही। वह मनुष्य को मन से कुछ अधिक मानता है। मनुष्य केवल तर्कशील प्राणी नहीं है, वह निश्चय करने वाला तथा अनुभव करने वाला प्राणी भी है। इस प्राणी को उसकी संपूर्णता में समझने के लिए तर्क की अपेक्षा कुछ और अधिक की आवश्यकता है। इस प्रकार हर्डन ने एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित किया कि मानव अतीत को कैसे समझा जाए। इसके लिए वह इन फ्यूलंग INFUHLUNG शब्द का प्रयोग करता है। इतिहासकार को अतीत के अंदर जाकर उसकी वास्तविकता का अनुभव करना चाहिए। इस विषय पर हर्डर स्वच्छंदतावादी हैं तथा अनुभव को तर्क के ऊपर रखता है। बाद में एक संतुलन का पुनर्स्थापन संभव था। हर्डर का महत्व उसके द्वारा उस बात के अस्वीकरण में है कि मनुष्य की व्याख्या के लिए तर्क पर्याप्त हैं। अतीत को उसके यथार्थ तथा विशिष्ट रूप में समझने के लिए अंतर्दृष्टि के तत्व की अपेक्षा होती है। उसने वस्तुतः ऐतिहासिक अवबोध के एक नए विज्ञान को विकसित करने के प्रयास में केवल नई समस्याएं पैदा की, किंतु यह ज्ञानोदीप्ति द्वारा परिभाषित मनुष्य के संकुचित अवबोध से एक चरण आगे था। इतिहास में संवेदना अथवा पुरानुभूति की आवश्यकता स्थापित हो चुकी थी। जब ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया को समझने के लिए विभिन्न प्रयास प्रतिपादित किए जा रहे थे, ठीक उसी समय ऐतिहासिक रीति विज्ञान भी तीव्र गति से अग्रसर हो रहा था। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में गोंटिगेन के विश्वविद्यालय में विद्वानों के एक उत्साही वर्ग द्वारा 17वीं शताब्दी के पंडितों द्वारा स्थापित सिद्धांतों का व्यवहार किया जा रहा था। ज्ञानोदीप्ति के प्रभाव स्वरूप यह मान्यता स्थापित हुई कि ऐतिहासिक अध्ययनों का अनुशीलन अनुशासित रूप में होना चाहिए। अब इतिहास एक केंद्र विषय बन गया तथा सहने सहने इसने अन्य शिक्षा शाखाओं को, विशेष रूप से विधि को, अपने विषय वस्तु के प्रति ऐतिहासिक दृष्टिकोण से विचार करने की दिशा में प्रभावित किया। निष्कर्ष: इतिहास का अध्ययन विषय अत्याधुनिक पाश्चात्य परंपरा है। इतिहास नामक जिस शाखा की उत्पत्ति 6वीं-5वीं सती ईस्वी पूर्व में ईसा पूर्व में यूनानी सभ्यता में थ्यूसी डायडीज के प्लोपोनेशियन युद्ध के इतिहास से प्रारंभ हुई, जिसमें उसने मूल साक्ष्यों को समीक्षात्मक प्रयोग करके इतिहास लिखा। यद्यपि यूनानी दर्शन में ऐतिहासिक घटनाओं का लेखन महत्वहीन बौद्धिक कार्य व्यापार था, और यहाँ पर इतिहास साहित्य का अंग था। यहूदी और ईसाई परंपरा में इतिहास को मनुष्य और ईश्वर के बीच स्थित संबंधों की कथा के रूप में प्रस्तुत किया गया। यहूदी धर्म का प्रारंभ ऐतिहासिक घटनाओं की स्मृति के साथ हुआ। ईसाई धर्म में ऐतिहासिक प्रपंच को स्वीकार करते हुए यह माना गया कि मनुष्य परम सत्य की प्राप्ति इतिहास के माध्यम से करता है, जिसमें ईश्वर अपनी सृष्टि के लिए आत्म प्रकाशन करता है। पैगंबर की भूमिका लोगों को ईश्वर के कार्य का स्मरण कराती है। प्रारंभ में यहूदी इतिहास ईश्वर द्वारा यहूदी समाज को अस्तित्व में लाने से संबंधित अनुक्रमिक घटनाओं की व्याख्या तथा सफलता का इतिहास था, परंतु यहूदियों की बेबीलोनियनों के द्वारा पराजय तथा बाद में ईसाई धर्म पर आधारित रोम की बर्बर जातियों द्वारा पराजय ने सफलता की अवधारणा के प्रति शंका प्रकट की। इसके उत्तर में अगस्टन ने सिटी ऑफ गॉड की रचना कर यह मानने का आग्रह किया कि चर्च में ही मनुष्य अपनी विमुक्ति की दिशा में विकास करता है, मनुष्य को अपना अर्थ इतिहास से प्राप्त होता है। मध्यकाल तक इन विचारों का अस्तित्व बना रहा। 14वीं 15वीं सदी में पुनर्जागरण युग में यूनानी तर्कशील समीक्षा की प्रकृति को पुनर्जीवित किया गया। इसका प्रभाव इतिहास लेखन पर पड़ना अनिवार्य था। आधुनिक युग के प्रारंभ में आत्म प्रकाशन करने वाले ईश्वर की अवधारणा पृष्ठभूमि में चली गई और एक अर्थपूर्ण सार्वभौमिक वृत्त के रूप में ऐतिहासिक विकास प्रक्रिया के स्वरूप की अवधारणा प्रत्यक्ष हुई। यूनान से चली आ रही मनुष्य और राजनीति में समीक्षात्मक बुद्धि ने ईसा के वास्तविक धर्म तथा प्रारंभिक चर्च को पुनर्जीवित किया। प्राचीन साहित्य में रुचि ने जनमानस को यूनान तथा रोम के इतिहास के अध्ययन और अनुसरण के लिए प्रेरित किया। 17वीं सदी में पांडुलिपियों की विशाल भंडार के संपादन से अतीत के निर्माण में प्रलेखों को अपरिवर्तनीय तथ्यों के रूप में स्वीकार किया गया। अब उस विज्ञान का प्रारंभ हुआ जिसमें साक्ष्य तथा प्रत्यक्ष अनुभव मात्र को ज्ञान का प्रमाणिक आधार माना गया। न्यूटन का मत इस नए विज्ञान की प्रमुख अभिव्यक्ति था। वाल्टेयर जैसे दार्शनिकों ने इतिहास में राजनीतिक तत्वों की अपेक्षा सांस्कृतिक तत्वों को अधिक महत्व दिया, जिससे युग विशेष की आत्मा प्रत्यक्ष होती है। इसी समय इस तथ्य को स्वीकार का आग्रह किया कि एशिया यूरोप के समान सभ्य था, इसीलिए यूरोप पर केंद्रित इतिहास को पूर्ण नहीं माना जा सकता। परिणाम स्वरूप इतिहास के तत्वों को व्यापकता प्राप्त हुई। इतिहास की इन प्रबुद्ध वादी विचारधारा की जर्मनी में बिक्को और हर्डर जैसे विद्वानों ने आलोचना की। उनके विचार में इतिहास का ज्ञान प्रकृति के ज्ञान से भिन्न है। प्रकृति ईश्वर की रचना और इतिहास का रचयिता मनुष्य है। इतिहास आत्म प्रकाशनीय है। हर्डर ने अपनी रचना में बिक्को के विचार को आगे बढ़ाते हुए कहा कि प्रत्येक समाज विशिष्ट होता है और समाज के विकास का प्रत्येक क्षण भिन्न होता है। इतिहासकार को अतीत के अंदर जाकर उसकी वास्तविकता का अनुभव करना चाहिए। हर्डर ने इतिहास लेखन में अनुभव को तर्क के ऊपर रखा। अब इतिहास एक केंद्रीय विषय बन गया। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यह मान्यता स्थापित हुई कि ऐतिहासिक अध्ययनों का अनुशीलन अनुशासित रूप में होना चाहिए। समाप्त।